लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम विश्व में भ्रातृत्व की स्थापना के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर, हमें अन्य धर्मों के भाइयों और बहनों के साथ पूर्ण मैत्री और साहचर्य में जीने की कृपा प्रदान करें। सभी के लिए हम प्रार्थना करें तथा सबके प्रति उदार रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स के जीवन एवं छोटानागपुर मिशन की शुरुआत पर एक चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। बेल्जियम के जेसुइट मिशनरी फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स ने अथक परिश्रम और त्याग से छोटानागपुर में ख्रिस्त की ज्योति जलाई और यहां के पीड़ित एवं उपेक्षित लोगों को जीने का रास्ता दिखलाया। निराशा और पीड़ा भरे समाज में न्याय, समानता एवं मानव प्रतिष्ठा के मूल्यों को बढ़ावा दिया, जिसके कारण आदिवासी अपनी दयनीय स्थिति से ऊपर उठने लगे। आज हमारा दायित्व है कि हम फादर लेबन्स द्वारा जलाई गई ज्योति को प्रज्वलित रखें और समाज को बेहतर बनाएं। पिछले कार्यक्रम में हमने सुना था कि छोटानागपुर मिशन में फादर लेबन्स किस तरह बड़े साहस के साथ लोगों को जान के खतरे से भी बचा लेते थे और उन्हें विश्वास में मजबूत बने रहने में मदद देते थे। आज हम सुनेंगे कि उन्होंने किस तरह अंधविश्वास से उन्हें छुड़ाया। अच्छी और बुरी आत्माओं में विश्वास तथा आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए अंधविश्वासी पूजा लोगों के जीवन का अभिन्न अंग था। फादर लेबन्स एवं अन्य मिशनरी आदिवासियों द्वारा पूजे जाने वाली सभी आत्माओं को बुरी आत्मा या शैतान की पूजा मानते थे, क्योंकि वे पूजा सच्चे और सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर से उनका ध्यान भटका देते थे। आदिवासियों के धार्मिक विचारों, अभ्यासों एवं पृष्ठभूमि का विश्लेषण किए बिना मिशनरियों ने उससे अस्वीकार किया और शैतान पूजा कहा। एक सर्वशक्तिमान ईश्वर पर विश्वास को विकसित करने हेतु फादर लेबन्स के समान सभी मिशनरियों ने आत्माओं पर विश्वास का सामना अधिकारवादी सिद्धांत से किया। कैथोलिक धर्म में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को देवी देवताओं पर बलि नहीं चढ़ाने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी। अतः जब फादर लेबन्स की ओर से धर्म शिक्षा देने में थोड़ी कमी हो जाती थी तो लोग अपनी पुरानी स्थिति में लौट जाते थे। दूसरी ओर फादर लेबन्स यह दिखलाने में नहीं हिचकते थे कि वे उन आत्माओं से नहीं डरते और उनसे ऊपर हैं। वे बतलाते थे कि आत्माओं एवं जादू टोना से वे अधिक शक्तिशाली हैं। पनारी और नवागढ़ दौरा फादर लेबन्स के प्रभावशाली हस्तक्षेप का स्पष्ट उदाहरण है। यात्रा के दौरान फादर लेबन्स एवं फादर हिगिनबेक ने एक ख्रिस्ती व्यक्ति से मुलाकात की जो कभी धनी हुआ करता था, किंतु मवेशियों के मर जाने के कारण अब घाटे में वह गरीब बन गया था। उन्होंने उसे अपने घर के सामने उदास बैठा हुआ पाया। दुख का कारण जानने हेतु फादर लेबन्स के सहानुभूति एवं आग्रहपूर्ण सवाल पर उसने आंसू बहाते हुए बतलाया कि उसने एक बड़ा पाप किया है। अपने दुर्भाग्य पर वह फादर लेबन्स से सलाह लेना चाहता था, किंतु बहुत दूर होने के कारण वह उनके पास नहीं जा सका और बदले में गांव के एक भाग्य बतलाने वाले के पास गया। भाग्य बतलाने वाले ने उसे बनारस के ब्राह्मण पुजारी के पास जाने की सलाह दी। ब्राह्मण पुजारी ने कहा कि उसके घर में एक जग छिपा हुआ है और चूंकि वह ख्रिस्ती बन गया है, उस जग ने घर में विपत्ति लाई है। वह ख्रिस्ती व्यक्ति उस जग के बारे नहीं जानता था, क्योंकि उसको उसके पिता ने घर बनाते समय घर की नींव में डाल दिया था। तब दोनों मिशनरियों एवं उत्साही पड़ोसियों ने उस जग को खोदकर निकालना चाहा। जग को खोदकर निकाला गया। उसके बाद फादर लेबन्स ने उसे जमीन पर फेंक दिया और पीट पीट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तभी उस क्रिस्ते व्यक्ति में साहस लौट आया तथा बुरी आत्मा मानकर उसने दुर्भाग्य के जग को रौंदा और उस पर थूका। फादर लेबन्स का दिखिया पनारे और नवागढ़ दौरा 1 सितंबर को समाप्त हुआ और वे 5 सितंबर को रांची लौटे। नवागढ़ के जमींदार डेबू साहू द्वारा भेंट किए गए घोड़े पर सवार होकर वे मनरेसा हाउस पहुंचे। फादर लेबन्स के साथ मूर्खों की तरह बर्ताव करने वाला जमींदार ने उन्हें घोड़े के साथ साथ चारा के लिए 100 रुपये भी भेंट किए थे। फादर लेबन्स ने कृतज्ञता के साथ घोड़े और पैसे को स्वीकार किया, किंतु स्पष्ट किया कि उसने उससे घूस के रूप में स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा, मैं आपके घोड़े को स्वीकार करता हूँ और इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, किंतु यदि कभी सुनाई दे कि आप अपने लोगों से लड़ाई कर रहे हैं तब मैं इसी घोड़े पर तुरंत आपके पास आऊंगा। फादर लेबन्स रांची में अधिक दिन नहीं रुके। पनारी और नवागढ़ से लौटने के 10 दिनों बाद अपने घोड़े पर सवार होकर वे नवागढ़ के दक्षिण में बीरू जिला का दौरा करने के लिए निकले। 1889 से तेतरा गांव के बहुत सारे लोग मिशन में प्रवेश करने हेतु नाम दर्ज करा रहे थे। फरवरी से फादर कार्डोन करीब 10,000 ख्रिस्तों की देखभाल कर रहे थे। मिशन की सूची में 800 परिवार थे। फादर कार्डोन भी बीरू में मिशन आंदोलन के इस महान अवसर के प्रति सजग थे। जुलाई की बैठक में फादर लेबन्स और फादर कार्डोन ने योजना बनाई थी कि वे सितंबर में बीरू का विस्तृत दौरा करेंगे, किंतु जब फादर लेबन्स नवागढ़ के टूर से वापस लौटे तो रांची के मनरेसा हाउस में उन्होंने फादर कार्डोन को बीमार पाया और उन्हें जल्दी ठीक होने की स्थिति में न देखकर वे दौरा के लिए निकल पड़े, क्योंकि वे बीरू में यात्रा की योजना को स्थगित नहीं कर सकते थे। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर लेबन्स के जीवन और छोटानागपुर मिशन की शुरुआत पर एक चर्चा सुन रहे थे। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे और अब लीजिए आज का भक्ति गीत, उसके बाद चेतना जागरण।
प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया सुख लाया, प्रभु यीशु मेरे दिल में प्रभु तू ही वो है, धन्य हूँ तू मेरे घर आया प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया सुख लाया, शुभ नाम शुभ शाम दिल से मैंने गाया प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया सुख लाया।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, अगर बटुआ साथ दे तो दोस्तों के साथ सैर सपाटे करना, टूर पर जाना, बड़े मॉल या शॉपिंग सेंटर में नए फैशन के कपड़े खरीदना या फिर होटलों में मनपसंद का भोजन करना सभी को अच्छा लगता है। पर धीरे धीरे यदि यह शौक आपकी मजबूरी बनने लगी, विशेषकर यदि आपकी आमदनी सीमित हो और आपको अपने शौक पूरा करने के लिए अपने माता पिता या मित्रों पर आश्रित होना पड़े या कर्ज लेने की नौबत आ गई हो, तो आपका यह शौक आपके साथ साथ पूरे परिवार को ले डूबेगा। भलाई इसी में है कि आप अपनी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया की बुरी आदत को शुरू में ही सुधार लें। जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाएं, यानी उतना ही खर्च करें जितना आपका बटुआ इजाजत दे। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया।
और मनोज भैया, अब की बार कहाँ का टूर लग रहा है?
टाइम तो आने था जरा, फिर टूर भी लगी जाएगा।
वैसे मनोज भैया, तुम भी एक टूरिस्ट हो गए हो। तुम्हारी नौकरी लगे अभी 3 साल ही हुए हैं, लेकिन तुम्हारे 5 जगह के टूर हो चुके हैं। क्यों?
अपनी अपनी किस्मत है ये तो।
लेकिन लगता है कि इस बार टूर के आसार नजर नहीं आते। क्यों?
क्योंकि मैं जरा असमंजस में पड़ा हूँ।
तुम और असमंजस में? ऐसी क्या बात है?
बात ऐसी है श्वेता, कि तुम्हारा ये भैया आपकी मोटरसाइकिल लेने का प्लान कर रहा है।
तुम्हारी नौकरी लगे अभी 3 साल हो गए हैं, मोटरसाइकिल तो तुम्हें कब से ही ले लेना चाहिए थी भैया, लेकिन तुम हो कि पापा के स्कूटर से ही काम चला रहे हो।
तो ये बीच बीच में यहाँ वहाँ अपने दोस्तों के साथ टूर करके कौन आता रहा?
तुम और कौन? लेकिन सिर्फ टूर ही नहीं, वहाँ टूर पर ये शॉपिंग भी किया करते हो तुम। लेकिन भैया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये टूर वूर में, यानी कि घूमने फिरने में अपना काफी सारा रुपया यूं ही उड़ा आते हो?
तुझे वो यूं ही लगता है, लेकिन ये नहीं लगता कि इस तरह मैं नई जगहों को देखाता हूँ, वहाँ पर घूम आता हूँ।
लेकिन फिर पैसा भी तो खर्च होता है ना भैया।
क्या मतलब?
मतलब ये कि तुम अगर यूं ही घूमने फिरने नहीं जाते तो फिर किश्तों पर ही सही अपनी बाइक अपनी कमाई से तो खरीद लेते भैया।
वही तो सोच रहा हूँ कि इस बार बाइक तो ले ही लूंगा।
फिर तुम्हारे टूर का क्या होगा? क्या इस बार टूर कैंसिल हो जाएगा?
क्यों कैंसिल हो जाएगा भाई?
लो, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम इस साल बाइक ले रहे हो।
वो तो मैं लूंगा ही।
अरे तो वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर तुम बाइक ले लोगे तो फिर टूर पर कैसे जा पाओगे? फिर तो टूर कैंसिल हुआ ना भैया।
अगर तुम दिमाग से काम लेती ना श्वेता, तो ऐसा नहीं कहती।
क्यों, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे पास दिमाग नहीं है?
अगर तुम्हारे पास दिमाग होता तो तुम ऐसी बात नहीं करती।
तो सीधे सीधे बताते क्यों नहीं तुम कि टूर की जुगाड़ तुम कहाँ से करोगे?
अपनी मम्मी जिंदाबाद, मम्मी को भूल गई क्या तुम?
अरे लेकिन जब तुम खुद ही कमाते हो तो फिर तुम्हें मम्मी से पैसे नहीं मांगने चाहिए।
अरे तो इसमें क्या हो गया?
क्यों, इसमें कुछ नहीं हुआ।
वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैंने मम्मी से पैसे मांग भी लिया तो इसमें क्या हुआ? मैं तो मम्मी से अक्सर पैसा मांगता ही रहता हूँ।
क्या भैया, तुम भी?
क्यों?
अरे भैया, अगर तुम नौकरी नहीं करते, बेरोजगार रहते तो मम्मी तुम्हें पैसे देना ठीक भी समझती, लेकिन अभी तो तुम खुद ही कमा रहे हो ना भैया।
तो क्या हुआ, माँ बाप किस लिए होते हैं?
तुम्हारा मतलब है माँ बाप सिर्फ पैसे देने के लिए होते हैं? वो भी जबकि तुम खुद कमा रहे हो।
कम ऑन श्वेता, ये तो माँ बाप का फर्ज भी होता है।
और बेटे का माँ बाप के लिए कोई फर्ज नहीं होता? चलो तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो माँ बाप तो अपना फर्ज पूरा कर ही रहे हैं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम उनके लिए भी अपना फर्ज पूरा कर रहे हो क्या? क्या अपने माँ बाप के लिए तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है भैया?
अरे उससे कौन इनकार कर रहा है श्वेता, फिर मैं कहीं भगा तो जा नहीं रहा हूँ या अलग तो हो नहीं रहा हूँ, तो मुझे अपना फर्ज पूरा करने के लिए अभी बहुत समय है।
कल किसने देखा है मनोज भैया, कल का क्या भरोसा? लेकिन सच कहूँ, तुम्हें बुरा लगे या भला, जब तुम मम्मी से पैसे मांगते हो ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है।
मम्मी से ही तो मांगता हूँ ना, तुमसे तो नहीं मांगता।
मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि जब तुम कमाते हो तो तुम्हें मांगने की जरूरत ही क्या है?
अरे जरूरत पड़ती है तभी तो मांगता हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी है मांगने की?
तुम तो कमा रहे हो भैया, तुम्हें तो खुद उन्हें कमा कर देना चाहिए, मगर तुम तो देने के बदले खुद ही उनसे ले लिया करते हो।
अभी तुझे बताया ना कि जरूरत पड़ती है तो लेना पड़ता है।
क्यों क्यों, तुम अपनी जरूरतों को छोटा नहीं कर सकते?
लो बताओ, अब जूते और कपड़ों की जरूरत पड़ेगी तो क्या मैं खरीदूंगा नहीं?
ये कपड़े और जूते तुम तभी खरीद सकते हो जब त्योहार हो या उनकी बहुत जरूरत हो, मगर तुम तो नए नए फैशन और डिजाइन के जूते और कपड़े खरीदते रहते हो बिना जरूरत के।
आज बात क्या है कि एक छोटी बहन अपने बड़े भाई को लेक्चर दे रही है।
मनोज भैया मैं तुमको लेक्चर नहीं दे रही, मैं तो तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ। मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि तुम आय से अधिक खर्चा किया करते हो।
मगर कमाता भी तो हूँ।
वही तो बता रही हूँ, कमाते जरूर हो मगर तुम्हारे खर्चे तुम्हारी कमाई से कहीं अधिक हैं भैया।
इस उम्र में तो खर्चे रहते ही हैं।
तभी तो कह रही हूँ, अगर अपनी जरूरतों और खर्चों को छोटा कर लो तुम, तो तुम्हें मम्मी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही न रहे। तुम अपना कमा तो रहे हो मगर मम्मी के हाथ पर अपनी कमाई का एक हिस्सा भी नहीं रखते हो, उल्टा उन्हीं से मांग लेते हो।
चलो ठीक है, तुम्हें एक बात बता दूं श्वेता, मैंने तुम्हारे लेक्चर का बुरा नहीं माना, क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन हो। अरे यही तो घूमने फिरने के दिन है, तो मुझे भी थोड़ा घूम फिर लेने दिया करो यार।
मेरा काम था तुम्हें समझाना, सो मैंने समझा दिया, आगे तुम्हारी मर्जी।
अच्छा मम्मी, इस साल मैं क्या खरीदने की सोच रहा हूँ बताओ तो जरा।
अब मुझे क्या पता कि तुम क्या खरीदने वाले हो।
अच्छा जरा सोच कर बताओ।
अरे अब मैं कहाँ तक और क्या सोचती रहूँ।
चलो मैं ही बता देता हूँ, मैं बाइक खरीदने वाला हूँ।
अच्छा ये तो खुशी की बात है बेटा कि तुम अपनी कमाई से कुछ अच्छी और बड़ी चीज खरीद रहे हो।
हाँ मम्मी, मैं कब से सोच रहा था, लेकिन अब इस साल ये पूरी कर ही लूँ।
अब जब सोचा है तो जल्दी खरीद ही डालो।
लेकिन एक प्रॉब्लम है मम्मी।
क्या प्रॉब्लम है बेटा।
मेरी सैलरी का कुछ हिस्सा नगद और कुछ हिस्सा किश्त चुकाने में लगता रहेगा, तो ऐसे में मुझे अपने सालाना टूर के लिए फिर आपसे पैसा चाहिए।
तुम अपनी नौकरी से थोड़ा बहुत कुछ पैसा अपने सेविंग अकाउंट खोलकर उसमें क्यों नहीं डाल देते।
वो भी कर लूंगा मम्मी, मगर पहले जरा मुझे जम तो जाने दो।
3 साल तो हो गए बेटा तुम्हें नौकरी करते हुए।
वो सब मैं कर लूंगा मम्मी, पहले आप ये बताओ कि आप मुझे टूर के लिए पैसा दे रहे हैं या नहीं, वरना दोस्तों के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा मम्मी।
अच्छा ठीक है बेटा, चले जाना टूर पर, मैं पैसे दे दूंगी। लेकिन तुम भी अपनी सैलरी में से कुछ बचाना सीखो, अब तुम बच्चे नहीं रहे।
ठीक है मम्मी।
देखो बेटा मनोज, मैं बहुत दिनों से तुम्हें एक बात कहना चाहता था।
हाँ पापा कहिए।
देखो बेटा, मैं 3 साल से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी नौकरी तो लग गई और तुम्हें तनख्वाह भी अच्छी है, लेकिन तुम घर में अपनी तनख्वाह देने के बजाय सारे पैसे खुद पर ही खर्च कर लेते हो, और यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन उसके बावजूद जब देखो जब अपनी मम्मी से पैसे मांगते रहते हो, क्या ये सब ठीक है।
पापा क्या है कि मैं मम्मी से तभी पैसा मांगता हूँ जब मुझे कम पड़ते हैं।
मगर तुम्हारी तनख्वाह भी हजारों से ऊपर ही है, फिर भी तुम्हें पैसे कम ही पड़ते हैं क्या।
तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा।
आखिर तुम्हें अपने खर्चों में कटौती करनी चाहिए। चलो आज मैं जिंदा हूँ और कमा रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर कल हम ना रहें, मैं रिटायर हो जाऊँ और तुम्हारी शादी हो जाए, तो तुम्हारे खर्चे और भी बढ़ जाएंगे, तब क्या तुम लोगों से भीख मांगोगे बेटा। तुमने अपनी वो हालत कर रखी है बेटा कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया।
मैं समझ गया पापा, आपका कहना बिल्कुल ठीक है पापा।
देखो बेटा, जिंदगी में पैसा बड़े मुश्किल से कमाया जाता है, और उससे भी मुश्किल काम है पैसे को सोच समझ कर खर्च करने की और उसे संभाल के रखने की, ताकि पैसा हमारे पास टिक सके या बुरे दिनों में काम आ सके।
मैं समझ गया पापा।
आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, अभी अभी आपने यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे विजय पंडित, दिव्या देवस्या, डॉक्टर भावना प्रधान और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।